الحمد لله سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. क्या पढ़ रहे थे भी आखिरी क्लास में? रेहान, जंगे यमामा के बारे में पढ़ रहे थे। और
बड़ा से बाहर
उन सहाबा का नाम किसी को याद है?
एक बार अभी मालिक हो जाए
बरा बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन। अच्छा, उस बाग का नाम किसी को याद है? जी, आप क्या कह रहे हैं?
सी
वहशी रजी अल्लाह तआला अन ने मिसाइल में कज़्ज़ाब को नेजे से मारा था, वो वहीं पे जहन्नुम रसीद हो गया। और अहमद, हाँ, हदीकत उर रहमान, उस बाग का नाम था हदीका। हदीका बाग को कहते हैं, और रहमान जो है ना, वो उसने अपना नाम रखा हुआ था। वो अपने आप को यमामा का रहमान कहता था, तो उसने इस बाग का नाम रखा हदीकत उर रहमान। अच्छा, ये जो जगह है ना यमामा की, आप में से हो सकता है अक्सर जो है वो जगह गए भी हूँ। यहाँ से बहुत करीब है, 20-25 मिनट्स की ड्राइव में हम उस जगह पे पहुंच सकते हैं। तो वहां पर जो है ना, वो ये कितने सहाबा शहीद हुए थे इस वाली जंग के अंदर? नहीं, कितने? 500 तो वो सहाबा थे जो के हाफिज कुरान थे, लेकिन टोटल सहाबा जितने शहीद हुए थे ना, वो थे 1200, 1200। और काफिर कितने कत्ल हुए थे? वो 10,000 से ज्यादा काफिर कत्ल हुए थे। उनकी टोटल तादाद 40,000 थी या 60-70,000 थी, लेकिन जो कत्ल हुए थे वो 10,000 से ज्यादा कत्ल हुए थे तकरीबन, और सहाबा 1200 कत्ल हुए थे। तो ये 1200 सहाबा है ना, ये 1200 सहाबा जो है, ये एक छोटे से कंपाउंड में इन सब की कबूर है, छोटी सी जगह है। तो इतनी बड़ी तादाद में सहाबा इतने जगह के ऊपर किसी और जगह पे नहीं है, सिवाय इससे ज्यादा बड़ा कब्रिस्तान सहाबा का और कौन सा है? जन्नतुल बकी, मदीना तैयबा के अंदर। वहां पर कितने साहब हैं तकरीबन? वहां के साहब की तादाद किसी को? 10,000 साहब हैं वहां पे जन्नतुल बकी के अंदर, जो मस्जिद नबी के बिल्कुल बराबर में कब्रिस्तान है। तो उसके बाद जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान है ना साहबा का, वो यहाँ पर है हमारे, कहते हैं पिछवाड़े में, ठीक है, और इतना करीब है यहाँ पे। लेकिन एक तो ये कि अक्सर लोगों को उसका पता भी नहीं है, दूसरा ये कि इन्होंने उसको काफी छुपा के भी रखा हुआ है कि भाई। अच्छा, एक दफा हम गए वहां पे ना, बहुत पहले, आज से कोई 12 साल पहले की बात है शायद, जब हम अपने एक दोस्त साहब के साथ जो है वो वहां पे फर्स्ट टाइम गए थे ना, तो वहां पे बकायदा एक बोर्ड लगा हुआ था। आज भी बोर्ड तो लगा हुआ है, लेकिन उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था कुबूर सहाबा, कुबूर सहाबा इस तरह का ना, तो सहाबा का नाम भी लिखा हुआ था। हमने कहा अच्छा भाई, ये तो बड़ा इन्होंने बकायदा टाइटल भी लगाया हुआ है, हमें तो लोग कह रहे थे कि इन्होंने छुपा के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ तो उसको पूरे सहाबा लिखा हुआ है। जब नेक्स्ट टाइम गए ना, चंद महीनों के बाद या शायद 1 साल के बाद, तो उस बोर्ड तो वही लगा हुआ था, लेकिन उस बोर्ड के टुकड़े होते हैं ना, उसको जोड़ करके उन्होंने इस तरह से एक बोर्ड बनाया हुआ होता है, तो उसके अंदर से जिस टुकड़े के ऊपर कुबूर सहाबा लिखा था, वो टुकड़ा गायब हो गया था, और वहां पर दूसरा टुकड़ा लगा दिया था जिसका रंग भी डिफरेंट था। देख करके पता चल रहा था कि उन्होंने बीच का टुकड़ा हटा करके दूसरा टुकड़ा लगा दिया है। वहां पे लिखा हुआ था, अब लिखा हुआ था कुबूर शुहदा यमामा, यमामा के शुहदा की कुबूर। बहरहाल, अब शायद वो भी उन्होंने वहां से हटा दिया, वहां वो जगह ही अब तो बंद कर दिया ना, गेट वेट लगा दिया है। तो लास्ट टाइम हम शेख उल हदीस साहब, हम लोग गौतम के साथ गए थे, तो वो उन्होंने रास्ते ही बंद कर दिया था। बहरहाल, तो वहां पर 1200 तकरीबन सहाबा की कुबूर है। और सहाबा कौन है भाई? सहाबा अंबिया के बाद सबसे अफजल लोग कौन है? सहाबा, ठीक है। तो हम जो है वो इंडिया जाएं अगर, तो हम वहां पे जाकर के हजरत कौन कौन सा औली है खराब है इंडिया में माशाल्लाह, हजरत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला, वो तो ताबी है ना। नहीं, जैसे भाई
सर, 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 सर,
नहीं जिनके लोग बड़े बड़े, क्या क्या नाम है वो जो बड़े बड़े वहां पे वो है, मोहिनुद्दीन चिश्ती अजमेर ही रहते, तो अजमेर शरीफ जाते हैं भाई, राइट। अजमेर शरीफ में इतना बड़ा वो उर्स करते हैं, पता नहीं क्या क्या ढोल धमाके और सब कुछ करते हैं, यहाँ पे अजमेर शरीफ है, इतने बड़े वली का वहां पे मजार है, और दूसरे और चिश्ती अजमेरी और भी कौन कौन से हैं बड़े, बहुत बड़े बड़े औलिया हैं, उनकी सहाबा के सामने कोई हैसियत नहीं। सहाबा का मकाम जो है ना, वो तो हजरत ख्वाजा अजमेर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हो, या जो है वो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हो, जो भी हो, सहाबा के तो वो गर्द को भी नहीं पहुंच सकते, ठीक है। और सहाबा के कबूर जो है वो तो मदीना तैयबा के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ पे यमामा के अंदर मौजूद हैं, और शाम के अंदर हैं, और जो है वो जॉर्डन के अंदर हैं, और इस तरह से बिखरी बिखरी लीबिया तक जो है वो सहाबा के कबूर हैं, हत्ता के सिंध में भी सहाबा की कबूर है। सिंध जो कि पाकिस्तान का एक सूबा है ना, कराची के बहुत करीब, वहां पर भी सहाबा की कबूर मौजूद हैं। तो सहाबा से बढ़कर के तो कोई और उम्मती हो ही नहीं सकता। बहरहाल तो ये मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ मार का हमने आखिरी क्लास के अंदर पढ़ लिया था, और इसका ये जो है ना वो सबसे बड़ा तो ये मार्का जो है वो सहाबा ने फिर जीत लिया, लेकिन बहुत ज्यादा जो है वो जानी नुकसान भी हुआ। तो इसकी खुशी भी थी कि इतने बड़े दुश्मन इस्लाम को खत्म कर दिया गया, लेकिन इतने सारे सहाबा शहीद भी हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, याद है कि जब उसामा रजी अल्लाह तआला का लश्कर वापस आ गया था ना उस जंग से, ठीक है, तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने उस लश्कर वो बाकी सहाबा के साथ मिल करके कितने टुकड़े बनाए थे उसके, 11 11 टुकड़े बनाए थे उसके, ठीक है। और उन 11 टुकड़ों को फिर इस तरीके से जो है वो रवाना करना शुरू किया था। तो 3 टुकड़े तकरीबन जो है वो मुसैलमा कज़्ज़ाब से लड़ाई के लिए रवाना किए थे, और फिर एक टुकड़ा जो है ना उस लश्कर का, यानी 11 टुकड़ों में से एक टुकड़ा जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहरीन रवाना किया। बहरीन का अगर आपको याद हो कि हमने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पढ़ा था कि 8 हिजरी, हिजरत के 8वें साल, वहां से एक बहुत बड़ा वफ्द जो है ना, एक बहुत बड़ा डेलीगेशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाया था, और उस डेलीगेशन में, उस वफ्द में एक बड़ी मजे की बात हुई थी। किसी को याद है? एक बड़ी मजे की एक इंसिडेंट हुआ था कि जब वो लोग मदीना तैयबा पहुंचे तो आपको याद है? मुझे नहीं यकीन था किसी को याद
अच्छा
है। एक थे, उनका नाम किसी को याद, वो जो थे ना एक, जो जिन्होंने क्या किया था, सारे जो है ना उन्होंने ऊंट अपने छोड़े और दौड़ पड़े सारे के सारे नबी अलैहिस्सलाम को देखने के लिए, अभी अल्लाह के नबी आए हुए हैं, अल्लाह के नबी से मिलने के लिए। इतना बहरीन कितना दूर है, यहां से हम सफर करते हैं तो हमें गाड़ी के ऊपर फुल स्पीड में जो है ना वो 8 घंटे से कम नहीं लगते, और बहरीन जो है वो इससे भी ज्यादा 400 किलोमीटर तकरीबन तो आगे है। तो कितना लंबा सफर करके वो लोग मदीना तैयबा पहुंचे थे, सारे के सारे दौड़ पड़े, लेकिन उनमें जो सबसे कम उम्र थे, सबसे कम सिन थे, उनका नाम था हजरत अशज, और असल नाम उनका था मुंजिर बिन सावा, मुंजिर बिन सावा, ठीक है। तो वो जो है ना वो नहीं दौड़े नबी अलैहिस्सलाम, ऐसा नहीं था कि उनको नबी अलैहिस्सलाम मिलने का शौक नहीं था, कोई उनको मोहब्बत नहीं थी आप से, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने साथियों का ख्याल रखा, उन्होंने सबके ऊंटों को बिठाया, उन्होंने सबके सामान को जो है ना वो एक तरीके सलीके से जो है वो रखा, फिर उसके बाद उन्होंने खुद अपने कपड़े चेंज किए, ठीक है ना, साफ सुथरे जो है ना वो सफेद कपड़े अपने अटैची केस में से निकाले, उसको पहना, और फिर नबी अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए। नबी अलैहिस्सलाम उनको देख करके बहुत खुश हुए और उनकी तारीफ फरमाई, और फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जो है ना वो दो सिफात दी हैं जो कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है वो दो सिफात, ठीक है। वो दो सिफात कौन सी थी, हमने लिखा भी था, एक थी हिल्म, ठीक है, हिल्म, बुर्दबारी, फोरबेरेंस, यानी तहम्मुल के साथ काम करना, जल्दी के साथ भाग करके दौड़ करके इस तरीके से काम नहीं करना। मजे की बात ये कि जो नौजवान होते हैं ना वो उनमें बाय नेचर हिल्म नहीं होता, ठीक है ना, उनके अंदर केमिकल चेंजेस आ रही होती हैं, और अभी आंटियों को यही पढ़ा रहे हैं हजरत जी की किताब में से, कि जो नौजवान होते हैं उनके साथ कैसे डील करना चाहिए, वो बड़े जल्दबाज होते हैं, बड़े तेज होते हैं। तो हमने उसमें ना एक अपना भी वाकया सुना, भी तो आखिर ठीक है एक जमाना था नौजवानी का, तो उसमें क्या वाकया आंटियों को बताया कि भाई ऐसा होता है, और अपने बच्चों के साथ जरा तामल के साथ मामला क्या करें, क्योंकि वो नौजवान है ना। हमने कहा कि जब हम उस एज में थे ना, टीन एजर जिसको कहते हैं, तो जब ये जुप्पा वगैरह तो नहीं पहनते थे उस जमाने में, पता ही कुछ नहीं था अलजी का, तो कुर्ता शलवार पहनते थे, तो कुर्ता शलवार की जेब तो खैर आज यहीं पर होती है ना, ऐसी इसी तरह होती है, तरफ होती है, तो बहुत सारे कुर्ते फट गए। क्यों? इसलिए कि तेजी से भागते थे, और ये जो हाइट है ना, ये हाइट बिल्कुल वो दरवाजे का जो कुंडा है ना, उस कुंडे की हाइट की है हाइट, ठीक है। तो जब भागते थे ना, तो ये कुंडे में फंस जाता था, और इतना तेजी से आगे जाते थे कि फट जाता था, ठीक है। तो इस तरह से पता नहीं कितने कुर्ते फट गए तेजी से भागने की वजह से, ठीक है। अब उसके बाद जब थोड़े बड़े हो गए और जरा मशाइख के साथ ताल्लुक भी हो गया, अब मैं सोच रहा हूँ, खुद ही सोच रहा हूँ कि यार अब मेरे कुर्ते क्यों नहीं फट रहे, ठीक है। अब कोई कुर्ता नहीं, बड़ा अरसा हो गया कोई कुर्ता नहीं फटा था। मैंने कहा अच्छा, अब जो है ना वो इस तरह तेजी से भागते नहीं है। अच्छा, फंसते अभी भी हैं, ठीक है ना, जेबें जो है वो कुंडों में फंसती अभी भी हैं, लेकिन क्योंकि स्पीड तेज नहीं होती, तो इस वजह से खुद ही रुक जाते हैं और कुर्ता बच जाता है। कुदरतन चंद दिनों पहले जो है ना, फिर एक कुर्ता फट गया। उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह ये बनी कि कमरे से बड़ी जोर की कोई आवाज आई, जैसे कोई गिर गया है, किसी को चोट लग गई है, तो उस वक्त फिर से दौड़ लगाई ना, तो फिर वो फंसा और फिर वो कुर्ता फट गया, ठीक है। तो वो अभी भी लटका हुआ, फटा हुआ कुर्ता। तो ये होता है नौजवानी में ना, इस तरह का मिजाज बन जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको एक्सेप्शन और ऑलवेज देयर, ये एक्सेप्शन थे, अल्लाह ताला इनको तहम्मुल की सिफत अता फरमाई थी, और दूसरी सिफत फरमाया कि तुम्हारे अंदर वकार और तमकिनत है, बहुत ही अच्छे से सलीके के साथ जो है ना तुम काम किया करते हो, ठीक है। यानी कुछ होता है ना, वकार होने का मतलब क्या होता है? वकार भाई हमारे कैमिल कजन, तो वकार होने का मतलब क्या है यार? भाई ठीक है, तहम्मुल है, आप जो है वो तेजी के साथ, जल्दी के साथ, जल्दबाजी में काम नहीं कर रहे, वकार का मतलब फिर क्या है?
एक बड़ा ही मतलब एक रोग सा एक बड़ा खाने
वकार का मतलब बड़ाई, रोब, ठीक है वो भी है, लेकिन इसका मतलब मानी ये समझा जाता है कि आप जो है ना कोई यानी ऐसी काम नहीं करते जो कि बेइज्जती का सबब बनते, ठीक है, बेइज्जती वाले काम नहीं करते, जलील तरीके के, या जो है ना वो इस तरह की घटिया किस्म के काम नहीं करते, और घटिया किस्म की बातें नहीं करते, ठीक है ना। आपकी जुबान से जो है ना वो जैसे फिल्ती किस्म की कोई गाली दे रहे हैं, या कोई गंदे अल्फाज बयान कर रहे हैं, या कोई इस किस्म का दूसरों को जो है ना वो यानी कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा जोक सुनाने का शौक होता है, ठीक है। तो अब जोक्स जो है ना वो भी जरा तमीज के जोक्स होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप जो है ना वो बहुत ही कोई इंडिसेंट किस्म का जोक सुनाना शुरू कर दें, और खामखा का किसी की जो है वो इज्जत को खराब करने वाला जोक सुनाना शुरू कर दें। तो ये जो बातें होती है ना, ये सारी की सारी वकार के खिलाफ होती है, ठीक है। आप अपने आप को सही तरीके से कंडक्ट करें, सही तरीके से आप चलने फिरने का इंतजाम करें, सही तरीके से आप जा करके बैठें, अच्छे अंदाज से जो है वो लोगों से बात करें, जुबान भी जो है वो अच्छी इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है ना, इसको कहते हैं वकार का होना, अंग्रेजी में उसको उन्होंने लिखा अब ग्रेस का होना, ग्रेस, ग्रेसफुल अपीयरेंस, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी सिफत है, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद है। इन्होंने क्या लिखा? मस्खरे का ऑपोजिट, हाँ मस्खरापन भी कहते हैं इसके ऑपोजिट, मस्खरापन, ठीक है। हर वक्त जो है उल्टी सीधी जो है ना वो जोक्स कर रहे हैं। अब वो जोक्स कभी किसी को पसंद आ भी जाते हैं, कभी किसी को जो है ना वो बहुत बुरे लग जाते हैं, ठीक है। हर एक को जो है ना वो हमारे इस किस्म के मस्खरे किस्म के जोक्स और जो मस्खरा किस्म की हरकतें अच्छी भी नहीं लगती हैं। बहरहाल, तो ये मुंजर बिन साबा रजतान जो है ये भी मुसलमान हो गए, उनका पूरा कबीला जो है वो मुसलमान हो करके वापस चला गया। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, ठीक है, तो उसके बाद जो है ना, फिर आप पहले भी सुनते आ रहे हैं कुछ क्लासेस से कि बहुत सारे लोग जो है वो मुर्तद हो गए थे, किसी ने जो है वो ज़कात देने से इनकार कर दिया, किसी ने जो है वो दूसरी यानी झूठे नबी होने का दावा कर दिया। तो इसी तरीके से बहरीन के भी जो है ना वो बहुत सारे लोग मुर्तद हो गए। मुंजर बिन सावा रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला ने इनको वापस बुला लिया अपने पास, इनका इंतकाल ही हो गया, ठीक ठीक है। तो अगरचे कि ये बड़े एक प्रोमिनेंट शख्सियत थे और एक सरदार थे वहां के, लेकिन इनका इंतकाल हो गया तो अब जो है ना वो लोग इस्लाम से फिर गए। वहां पर एक सहाबी जारूद बिन बिशर रजी अल्लाह तआला भी रहते थे, तो वो चूंकि नबी अलैहिस्सलाम के साथ कुछ वक्त गुजार चुके थे, सहाबी थे वो इस्लाम के ऊपर कायम रहे और उन्होंने लोगों को वापस इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया। तो उनकी दावत की वजह से एक जो उनका सब कबीला था बहरीन का, अब्द कैस, वो फिर से मुसलमान हो गए, ठीक है। लेकिन बाकी लोग जो है ना वो बदस्तूर मुर्तद ही रहे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने एक सहाबी हजरत अला बिन हजरमी, हजरमी हजर मौत जो यमन का एक एक जगह है, तो वहां के रहने वालों को हजरमी कहते हैं। तो आला बिन हदरमी रजी अल्लाह तआला उनको बहरीन एक लश्कर के साथ रवाना किया उन मुर्तदीन की सरकूबी के लिए, ठीक है, उनके सर को कुचलने के लिए, यानी उनको जो है ना वो कहने के लिए भाई या तो मुसलमान हो जाओ या फिर हम हमारी तलवार उठाओ फैसला करेंगे। तो आला बिन हदरमी रजी अल्लाह तआला जो है वो अपने लश्कर को लेकर के वहां के लिए रवाना हुए। तो रास्ते में आप देख ही रहे हैं कि जब हम उधर से इधर आते हैं बीच में ना बड़े बड़े डेजर्ट्स पड़ते हैं, बहुत बड़ा बड़ा एरिया ऐसा पड़ता है कि जहाँ पे कोई पानी वगैरह का नाम निशान नहीं होता, और उनमें ज्यादातर तो एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पर पथरीली जमीन है, ठीक है, लेकिन पानी वानी कुछ नहीं है, तो उसको भी डेजर्ट कहते हैं। और ऐसा भी डेजर्ट होता है जिसके अंदर प्योर सैंड होती है, सैंड ड्यून्स, ठीक है ना। तो वो रियाज से इस तरफ भी इस तरह की कुछ है, लेकिन रियाज से मशरक की तरफ, ईस्ट की तरफ और भी ज्यादा बड़े बड़े जो है ना वो सैंड ड्यून्स वाले डेजर्ट्स, ठीक है। तो उनमें से किसी एक डेजर्ट के अंदर जब ये लोग पहुंचे ना, तो ये लोग आराम के लिए लेटे थे कि इनके ऊंट जो है ना, जिनके ऊपर सारा का सारा इनका सामान लदा हुआ था, वो ऊंट भाग गए, ठीक है, क्या कह रहे। सोचिए फिर उसके बाद दोबारा पूछ लीजिएगा। बहरीन एक आइलैंड है, ठीक है, उसको बहरीन कहते हैं। दो
दो
बहर, बहरीन ये ड्यूअल का टेंस है, ड्यूअल यानी तस्निया का सीगा है, दो बहर के दरमियान ये है, ठीक है, तो इसी को आइलैंड कहते हैं। तो पर्शियन गल्फ या अरेबियन गल्फ, एक लड़ाई होती थी इसको वो कहते थे, इसको पर्शियन गल्फ कहेंगे, ये कहते थे इसको अरेबियन गल्फ कहेंगे, लिलिपुतियन वाली लड़ाई, अंडे को इधर से तोड़ना है, अंडे को इधर से तोड़ना, उसके ऊपर लड़ाई होगी उनकी, ठीक है, उसी तरह पर्शियन गल्फ या अरेबियन गल्फ ये भी एक लड़ाई है। बहरहाल तो बहरीन जो है ना वहां के लिए लोग रवाना हुए, रास्ते में इनके ऊंट भाग गए, तो सहाबा बहुत परेशान हुए, हत्ता कि ऐसा लग रहा था कि अब तो नहीं बचेंगे, ठीक है, क्योंकि सहरा के अंदर अगर पानी और खाने पीने का इंतजाम ना हो तो फिर आपके जिंदगी को चांस भी आते। अभी भी चंद दिनों पहले कोई इंडियन, साउथ इंडिया के कुछ दो लोग थे गालबन, वो यहाँ पे क्या नाम है उस बड़े सहरा का, तो
बिल्कुल
रुमखाली, तो वहां पर वो लोग ना हालांकि गाड़ी में थे लेकिन उनका वो जीपीएस सिग्नल्स वगैरह लॉस्ट हो गए और उनका फोन बंद हो गया, क्या हो गया, उनका रबता खत्म हो गया और शायद वो रास्ते से भटक चुके थे, तो वो सहरा में मर गए, ठीक है, अब पता नहीं कहाँ जाके वो फंस गए थे, मैंने बाकी तफसील उसकी नहीं पढ़ी। तो इन लोगों को ऐसे लगा कि बस अब जो है ना वो हमारी मौत आ गई है, और उन्होंने एक दूसरे को नसीहतें करनी शुरू कर दी, कलमा वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया। तो इनके जो सरदार थे हजरत अला बिन हदरमी उन्होंने उनसे कहा कि क्या तुम लोग अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद के लिए नहीं निकले हो, अल्लाह ताला यकीन करो तुम्हें जलील और रुसवा नहीं करेगा, इस तरह से जो है ना ये भूख और प्यास वाली मौत जो है ना अल्लाह ताला तुम्हें नहीं देगा, तुम फिक्र ना करो, ठीक है। तो ये लोग मुतमईन हो गए, फिर रात को सो गए, सुबह को उठे, इस फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज के बाद इनको जो है ना वो आगे पानी नजर आना शुरू हो गया, तो खुश हो गए, पानी था, पानी नजर आना शुरू हो गया। लेकिन जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो पता चला कि वो पानी नहीं था बल्कि वो असल में सराब था, जिसको अंग्रेजी में मिराज कहते हैं, मिराज धोखा, जो कि ऑप्टिकल इल्यूजन होते हैं, आप यहाँ से भी अगर वो हाईवे पे सफर कर रहे हो तो आगे पानी नजर आना शुरू हो जाता है ना, कि पानी नहीं होता। बहरहाल थोड़ा मजीद आगे जा करके इनको वाकई पानी मिल गया और बहुत खुश हुए, पानी वगैरह सब उन्होंने यानी पानी वानी पिया, इतने में अल्लाह ताला ने इनके ऊँटों को भी वापस भेज दिया, ठीक है। तो ऊँट भी वापस आ गए, अब ये लोग जो है बहरीन की तरफ रवाना हुए। तो बहरीन पहुंच करके सामने जो है वो दो दुश्मन की फौजें थी, और इस तरफ इन्होंने अपने फौजों को जो है पड़ाव डाला। रात के वक्त जो है ना, इनको एकदम से शोर की आवाजें आनी शुरू हो गई। तो इन्होंने अपने लोगों को, जो जासूस वगैरह होते हैं, उनको भेजा कि अभी चेक करो क्या, कहाँ से शोर आ रहा है, क्यों इतना। तो उन्होंने आके कहा कि वो जो बहरेनियों की फौज है ना, जो कि असल में ना उनकी जो आर्मी थी वो ईरानियंस के ऊपर मुश्तमिल थी, ठीक है, ज्यादातर उनमें ईरानी लोग थे। तो इन्होंने बताया, वो जो जासूस थे उन्होंने आके बताया कि वो लोग ना शराब पी करके नशे में धुत होकर इस तरह के शोर में था, ठीक है। तो अला बिन हजरमी रतारानों ने इस मौके को गनीमत जान करके उसी वक्त उनके ऊपर अटैक कर दिया और इन सबको जो है ना मार दिया या वहां से भगा दिया। उनका एक सरदार था मुतइम बिन जुबैर, तो वो भी मारा गया, और बाकी जो बच गए ना वो फिर मजीद आगे भाग गए, आगे एक और जजीरा। अच्छा, ये मुझे थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा है, और मजीद जो है वो रिसर्च के लिए कुछ जगह मिली नहीं कि ये लोग बहरेन कैसे पहुंचे, ठीक है, क्योंकि बहरेन जो है उसके और यहाँ, यानी जो अब सऊदी अरब कहलाता है, अलखोबर का है ना, तो अलखोबर के बाद बहरेन जो है इसके दरमियान एक बहुत बड़ा जो है ना वो पानी का हिस्सा है, जिसके ऊपर अब इन्होंने हाईवे बना दिए, कॉजवे उसको कहते हैं, ठीक है। तो कॉजवे पे फिर आप गाड़ी चला करके फिर पहुंचते हैं, और नीचे जो है वो समंदर होता है, ठीक है। तो ये लोग जो है वो बहरेन कैसे पहुंचे थे, क्योंकि इनके पास कश्तियां नहीं लिखा हुआ है। जी हाँ
सही
है, हाँ सही सही है। मेरे जहन में यही बात आ रही थी कि शायद ये जो हमारा ईस्टर्न प्रोविंस कहलाता है ना, तो ये दमाम है, जज़ाकअल्लाह आपने बताया कि अल अहसा, और ये पूरा एरिया भी बहरीन का हिस्सा समझा था। तो ये लोग जो कबाइल थे ना, ये समंदर के दरअसल इस तरफ आबाद, ठीक है। तो इन तक तो ये लोग आराम से पहुंच गए, इनके साथ जो लड़ाई हुई इनको भगा दिया। तो जो भाग करके फिर वो ना अपनी कश्तियों में सवार होकर के जो अभी वाला बहरेन है ना, वो वहां चले गए। उस जगह को उस वक्त दारेन कहा जाता था, किताब में लिखा हुआ है दारेन कहा जाता था। वो लोग सारे के सारे भाग करके दारेन चले गए। अब जो है ना, सहाबा के पास कश्तियां तो थी नहीं, ठीक है ना, कश्तियां तो सहाबा के पास कब आई थी, सहाबा के पास कश्तियां कब आई,
रोमियो
रोमियो के खिलाफ, हाँ, लेकिन किसके जमाने में आई, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला के जमाने में पहला बहरी बेड़ा सहाबा का बना, ठीक है। पहला जो फ्लीट था ना वो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला के जमाने में बना था, ठीक है। यजीद बिन मुआविया जो था वो उस बहरी बेड़ा का सिपहसालार भी, ठीक है, जिसका वो करबला के वाकये में सारा जिक्र आता है। बहरहाल, तो इनके पास तो कश्तियां वगैरह थी नहीं, तो अब इन्होंने कहा कि भाई दुश्मन उस तरफ है, उनको हम छोड़ भी नहीं सकते, वो फिर से फितना बनेंगे, अब हम क्या करें। तो उस वक्त अला बिन हजरमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी फोर्सेस को कहा कि फिक्र ना करो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी जिस तरह खुश्की में मदद करी है ना, अल्लाह ताला तुम्हारी तरी में भी मदद करेंगे, तरी का मतलब पानी के अंदर भी, समंदर में भी तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है। हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, और हम अल्लाह ताला के कलमे को बुलंद करने के लिए यहाँ पे निकले हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे, अपने घोड़ों को समंदर में डाल दो, ठीक है। तो इन्होंने फिर अमीर की बात मानी और अपने घोड़ों को, ऊंटों को, खच्चरों को, हत्ता के गधों को भी जो है ना समंदर में डाल दिया, ठीक है। और अल्लाह ताला ने मदद फरमाई, समंदर की मौजों ने उनको खुश करते करते बिलाखिर दारेन के जजीरे में पहुंचा, जो कि आज का बहरेन कहलाता है, ठीक है। इसी के बारे में शायद, यकीन नहीं, लेकिन इसी के बारे में शायद अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, किसी को शेर याद है लिख करके, दश्त
दश्त
तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त कहते हैं जंगल बियाबान को, ठीक है ना, जंगल बियाबान तो क्या, हमने दरिया भी नहीं छोड़े, बहरे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े, ठीक है। तो सहाबा ने किसी चीज को नहीं छोड़ा अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए। आप कुछ, सबको जिंदा पहुंच गए, हत्ता के हमने अपने हजरत से बयान में सुना कि जब अमीर लश्कर और पूरा लश्कर दूसरी तरफ पहुंच गया ना, तो किसी साहबी ने कहा भी मुझे अपना प्याला नहीं मिल रहा, प्यारा जो है ना वो कहीं गुम हो गया, कहीं रह गया है, तो उन्होंने ओशन को हुक्म दिया, ए पानी की मोजो प्याला दो, तो उधर से एक मौज आई वो प्याला लेकर वो भी वापस आ गया। ठीक है, तो कुछ उनका लूज नहीं हुआ, ना तो किसी की जान खत्म हुई, ना किसी का जानवर खत्म हुआ, और ना किसी का जो है वो प्याला गुम हुआ पानी के अंदर। तो बहरहाल वहां पे पहुंच करके इन्होंने काफिरों के ऊपर हमला कर दिया, उनके तो वहमो गुमान भी नहीं था कि ये लोग जो है ना बगैर कश्तियों के समंदर उबर करके पहुंच जाएंगे, और अल्लाह ताला ने इनको फतह अता फरमा दी और बहुत ज्यादा माल गनीमत इनके हाथ आया। ठीक है, इस पे कहते हैं कि ये लोग वापस कैसे आए, बड़ा अच्छा, उनकी कश्तियां तो थी ना, तो माल गनीमत में कश्तियां कैसे उन्होंने छोड़ दी होंगी, कश्तियां वापस लेकर के वापस आ गए, फिर उसको उधर ही छोड़ करके पार्क करके फिर वहां से वापस आ गए होंगे दूसरे कामों की तरफ। अच्छा, इसमें फरमाते हैं कि ये जो जंग थी ना मुर्तदों के खिलाफ, ये बड़ी अहम जंग थी, अगरचे कि इसमें दुश्मन उतना पावरफुल नहीं था जितना कि मुसैलमा कज़ाब वाली जंग के अंदर था, लेकिन ये जंग अहम इसलिए थी क्योंकि इसमें सहाबा कराम की जंग जो है ना वो पहली दफा इरानियंस के साथ हुई। ठीक है, और इसमें क्रिश्चियंस भी थे, इसमें यहूदी भी कुछ थे जो कि वहां पे बसते थे, और इरानियंस भी थे, तो सहाबा कराम ने जो इरानियंस को, ईरानी फारसी लोगों को जो शिकस्त दी थी ना, तो इससे जो है ना वो इनका गोया के यानी आगे बढ़ने का रास्ता हमवार हो गया था, उन लोगों के दिलों के ऊपर सहाबा की एक हैबत तारी हो गई, दबदबा बैठ गया ना इनका, तो ये फिर फारस की फतह का कहते हैं पेश खीमा बन गई। ठीक है ना, फारिस की फतह का पेश खेमा बन गई वाली जंग। अच्छा, हिंदुस्तान के भी लोग थे इसके अंदर, इस वाले लश्कर में काफिरों के लश्कर में, यानी मुकदमा जो कि समथिंग दैट लीड्स टू समथिंग एल्स। ठीक है, तो पेश रफ्त का जैसे लफ्ज होता है ना आगे बढ़ने को, ठीक है, तो किसी आगे की चीज का जो है ना वो एक। अच्छा, तो मुर्तदीन के खिलाफ जंगें चल रही हैं, सबसे पहले कौन सी हुई, मानहीन ज़कात के खिलाफ, फिर उसके बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ, फिर उसके बाद बहरेन वालों के खिलाफ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है ओमान की तरफ, ओमान वाले लोग भी नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में मुसलमान हो गए थे, लेकिन फिर आपसे वसल्लम की वफ़ात के बाद ये लोग मुर्तद हो गए, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत हुज़ैफ़ा बिन मुहसिन और हजरत अरजफ़ा बिन हरतमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को ओमान की तरफ लश्करों के साथ रवाना किया। वहां पर लकीद बिन मालिक एक मुर्तद था, उसका कब्जा था, तो इसके खिलाफ फिर ओमान में ये लोग पहुंचे और तब इसके ऊपर हमला किया, दुश्मन के 10,000 बंदे मारे गए और मुसलमानों के हाथ बहुत सारा माल गनीमत आया, और इस तरीके से ओमान के जो बाकी मानदा लोग थे वो भी दोबारा इस्लाम में दाखिल हुए। ठीक है, तो आज भी ओमान का जो कंट्री है वो इस्लामिक कंट्रीज के अंदर शामिल होता है, मुस्लिम कंट्री।
अच्छा
मुसलमानों के कितने लोग शहीद हो गए ये नहीं लिखा हुआ है किताब के अंदर, इस वजह से हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो 10,000 काफिर लिखा हुआ है कि उनके 10,000 बंदे मारे गए। अच्छा, फिर उसके बाद ना हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यमन के लोग भी मुसलमान हो गए। इंशाल्लाह अगली क्लास में इरादा है कि आप लोगों को थोड़ा मैप्स वगैरह भी दिखाएंगे, सऊदी अरब का तो मैप उम्मीद है कि सबके जहन में होगा, फिर से तो सऊदी अरब का जो साउथ ईस्ट, सऊदी अरब ऐसे है ना ऐसे है, ठीक है, तो इसका जो नीचे का जो पोर्शन है ना वो इस तरफ नॉर्थ साइड की तरफ वो ओमान है, आधा ओमान है और बाकी आधा यमन है। ठीक है, आजकल वहां पे दो कंट्रीज हैं, ओमान और यमन। ठीक है, तो ओमान, अब वो इतने बड़े कंट्रीज उस जमाने में नहीं होते थे, वो छोटी छोटी सी जगह होती थी, वहां पर कुछ कबाइल रहते थे उसको भी ओमान कह देते थे। ठीक है, तो ओमान से जब फारिग हुए ना तो अब ये लोग पहुंचे यमन की तरफ। ठीक है, यमन में भी लोग मुर्तद हो गए थे, तो भगत सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन 11 लश्करों में से एक लश्कर हजरत मुहाजिर बिन अबी उमैया रजी अल्लाह तआला अलैह, मुहाजिर बिन अबी उमैया रजी अल्लाह तआला अलैह के साथ रवाना किया, और हजरत अकरमा रजी अल्लाह तआला अन, ठीक है, जो कि ओमान गए हुए थे लड़ने के लिए, तो वो भी फारिग हो गए ओमान से, तो वो भी आकर के मुहाजिर बिन उमैया अबी उमैया रजी अल्लाह तआला के साथ शामिल हो गए। ठीक है, अच्छा, यवन में नबी अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी हजरत फिरोज दैलमी रजी अल्लाह ताला, फिरोज दैलमी रजी अल्लाह ताला, उनको नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में एक खास मुहिम पर रवाना किया। ठीक है, वो किसी को याद है? फिरोज दैलमी रजी अल्लाह को नबी अलैहिस्सलाम ने वहां पे क्यों भेजा था? बिल्कुल अपनी वफात से चंद दिन पहले की बात। जी,
अच्छा
ज़कात कलेक्ट करने के लिए नहीं, वाज ततर आल्सो पार्ट ऑफ बहरीन एट दैट टाइम। नहीं, कतर का तो, कतर तो काफी दूर है बहरीन से, कतर वाज डेफिनेटली नॉट पार्ट ऑफ बहरीन। ठीक है, और कतर ऐसा लगता है कि शायद उस जमाने में वहां पे कोई रहता भी नहीं होगा, तो इसका कहीं जिक्र नहीं आता। जी, एक झूठा, एक आदमी ने झूठी नबूवत का दावा, उस जमाने नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ना दो लोगों ने झूठी नबूवत का दावा किया, इन्होंने भी सही जवाब दिया ऑनलाइन कि हजरत अस्वद, सॉरी नाउज बिल्ला, खबीस था वो तो बहुत बड़ा, अस्वद अंसी, अस्वद अंसी, ठीक है, इसने और मुसैलमा कजाब ने नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ही दावा कर दिया था नबूवत का। ठीक है ना, उसने दावा इस तरह से किया था मुसैलमा कजाब ने कि नबी अलैहिस्सलाम के पास आकर के उसने कहा था कि आप जो है ना वो लिख के चले जाएं, ये बता दे लोगों को कि आप जब दुनिया से चले जाएंगे तो मैं फिर आपका खलीफा बनूंगा और मुझे नबूवत मिल जाएगी। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम ने, मैं तुम्हें ये छड़ी भी नहीं दूंगा, ठीक है ना, चले जाओ इधर से। और अस्वद अंसी जो था ये यमन में रहता था, तो उसके पास हजरत फिरोज दहलमी रजान को भेजा था कि उसको कत्ल करके आओ, तो इन्होंने जो उनकी छोटी सी एक टीम थी उसके साथ गए, और नबी अलैहिस्सलाम की वफात से ठीक एक दिन और एक रात पहले, यानी 24 आवर्स पहले, अस्वद अंसी को जो है वो कत्ल किया, और फिर उसकी न्यूज जो है ना वो मदीना तैयबा रवाना कर दी। लेकिन कासिद जब पहुंचा तो नबी अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका था। ठीक है, लेकिन फिरोज दैलमी रहता जो है, फिर वो यमन में ही रहे, नबी अलैहिस्सलाम ने पैगाम भिजवा दिया था कि तुम अब यमन के ही आमिल बनोगे, यानी हमारे रिप्रेजेंटेटिव तुम यमन के अंदर हो, वहीं पे तुम जकात वगैरह इकट्ठा करोगे और हमारे जो है रिप्रेजेंटेटिव रहोगे, तो वो वहीं पे फिर मुकीम हो गए फिरोज दैलमी रहता। जी,
तो जाके
उसकी बीवी के हेल्प से उसके महल के अंदर जाके उसको कदम किया था।
बीवी ने शादी की।
अच्छा, चलो बात नहीं, मैंने कहीं पढ़ा नहीं। ठीक है, तो फिरोज ज़ैलमी रज़ान वहां पे पहले ही मौजूद थे, और मुहाजिर बिन अबी उमैया रज़ान और हजरत अकरमा रज़ान वहां पे पहुंचे, तो उनके साथ मिल करके फिर इन लोगों ने मुर्तदों के ऊपर हमला किया और उनको जो है वो शिकस्त दे दी। बड़े सरदार जो है वो मारे गए, कुछ जो है वो गिरफ्तार हो गए, और जो गिरफ्तार हुए उनको मदीना मुनव्वरा भेज दिया, वहां पे जा करके ये लोग भी मुसलमान हो गए। ठीक है, तो इस तरह फिर यमन जो है ना वो फिर से हल्का इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। फॉर टीचिंग द दीन, फॉर टीचिंग द दीन, क्या नहीं है तो नहीं, अस्वद अंसी को कत्ल करने के लिए भेजा था फिरोज दैलमी रज़ान। अच्छा, फिर यमन के कुछ इलाके जो कि अब तो वो यमन का हिस्सा कहलाते हैं, लेकिन उस जमाने में ना यमन अलग कहलाता था, और ये हजर मौत जो है ये एक अलग इलाका कहलाता है, ये एक बड़ा मेजर इलाका है यमन का, हजर मौत। ठीक है, ये वो वादी है कि जहाँ पे कहा जाता है, यानी एक स्टोरी, एक टेल मशहूर है कि वहां पे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, वो जो नाफ की किताब में भी शायद लिखा है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर जब अजाब आ गया था ना, तो सालेह अलैहिस्सलाम मोमिनीन को लेकर के वहां से निकल गए थे, तो वो पहुंच गए थे, यानी सफर करते करते वो बिलाखिर हदर मौत पहुंच गए थे, और हदर मौत की वादी के अंदर ही फिर उन्होंने मोमिनीन के साथ रिहाइश अख्तियार कर ली थी, और वहां पर उनको मौत आई थी। ठीक है, तो हदर मौत यानी मौत हाजिर हुई उनके ऊपर, इस वजह से उस जगह का नाम हदर मौत पड़ गया। ठीक है, और ये आज भी ये बड़ी एक मशहूर वादी है, वहां पे ना बड़े बड़े स्कॉलर्स जो हैं वो आज भी रहते हैं, अगरचे कि अब उनका अकीदा जरा सा बड़ेलिया टाइप का अकीदा हो गया है, लेकिन पहले जो है ना बड़े जबरदस्त किस्म के वहां पे इस्लामिक स्कॉलर्स उधर रहा करते थे, और नबी अलैहिस्सलाम की यानी सादात की फैमिलीज वहां पे सेटल हैं। ठीक है, हजरा मौत वगैरह के इलाके के अंदर। What happens if some people become Muslim and saw Muhammad sallallahu alaihi wasallam then became murtad then became Muslim, would they be called sahaba? No, they lost their sahabiyat. ठीक है ना, अगर कोई मुर्तद होकर के दोबारा से नबी अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमा जाने के बाद मुसलमान हुआ तो फिर वो अपने सहाबियत का जो उसने मर्तबा था ना वो लूज कर दिया, खत्म हो गया, अब वो दोबारा सहाबी नहीं कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, तो हदरा मौत और कंधा के जो इलाके थे ना वहां पर यमन के बराबर में, तो वहां पर भी कुछ लोग जो है वो मुर्तद हो गए थे। अशअस बिन कैस उनके सरदार का नाम था, आप के पास तो आया था ये और मुसलमान हो गया था लेकिन फिर वफात के बाद मुर्तद हो गया, तो सहाबा कराम ने फिर इसके ऊपर हमला किया और इसको भी जो है ना वो शिकस्त दे दी। लेकिन अशद बिन तैस और इसके कुछ और लोग जो थे उन्होंने फिर मुसलमानों के साथ सुलह कर ली और वो दोबारा से मुसलमान हो गए। ठीक है, ये जो यमन और हदरा मौत में मुर्तदीन को सहाबा ने शिकस्त दी ना, ये आखिरी वॉर थी अगेंस्ट द मुर्तदीन, मुर्तदीन के खिलाफ ये आखिरी जंग थी, उसके बाद फिर अब मुर्तदीन का मसला खत्म हो गया। ठीक है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जरा सोचे कि इतने मुश्किल हालात के अंदर के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं और यानी लोग जो हैं वो जो के मुसलमान हो चुके हैं वो जो है वो इस्लाम से फिरते चले जा रहे हैं, अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को कितनी हिम्मत और कितना हौसला अता फरमाया। ठीक है, और दूसरे जो सहाबा कराम थे उन्होंने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का कितना साथ दिया। ठीक है, तो ये सब चीजें जब मिल गई ना, उनका जो अमीर था उनका हिम्मत और हौसला और नीचे रहने वालों की जो है वो मदद, तो अल्लाह ताला की फिर इसके ऊपर खसूसी रहमत नाजिल हुई और सारे इन फितनों का खात्मा हो गया। ठीक है ना, जब ये अंदरूनी फितने खत्म हो गए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अंदरूनी फितने कहलाते हैं ना ये, ठीक है ना, अंदर से आपके अपने रैंक्स के अंदर से जो फितने होते हैं, सहाबा में तो कोई ऐसा मुर्तद हुआ ही नहीं था, जो यानी जो मुहाजरीन और अंसार थे ना इनमें से तो कोई मुर्तद नहीं हुआ, लेकिन जो नए नए सहाबा थे आखिरी जमाने के जो लोग थे बाहर से जो आए हुए थे वो मुर्तद हो गए, वो बाहर तो सहाबी कहलाए थे लेकिन मुर्तद होने के बाद वो सहाबी सब खत्म हो गए। ठीक है, तो ये अंदरूनी फितने सारे के सारे जब खत्म हो गए ना, अब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने क्या कहा, चलो अब हम सड़कें बनाते हैं, अब हम बिल्डिंगें बनाते हैं, ये कहा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। सही, उन्होंने ना सड़कें बनाने का कहा कि अब जो है ना हम सब मिल करके बहबूद आबादी फैमिली प्लानिंग करेंगे, ठीक है, अब हम ब्रिजेस बनाएंगे, हम पुल्स बनाएंगे, और अब हम बिल्डिंगें बनाएंगे, और अब हम जो है ना वो और चाइनीज सीखेंगे अब नहीं, बल्कि उन्होंने कहा अब हम जो है ना वो पारिस और रोम का रुख करेंगे। ये दो सुपर पावर्स थी, सोचे जरा, सोचे आप यानी किसी ने ना एक बड़ी अजीब किस्म की मिसाल दी, वो उस मिसाल से मैं इतना इतफाक नहीं करता लेकिन बड़ी मजे की मिसाल दी, उन्होंने कहा कि ऐसे ही है कि आजकल जो है ना कोई वो जो नॉर्थ पोल के ऊपर जो लोग रहते हैं ना एस्किमोस, ठीक है, जिनके वो इग्लू वाले घर होते हैं, है ना, वो इग्लूस के अंदर रहते हैं बेसिकली, ठीक है ना, तो किसी ने लिखा कि ऐसे ही था जैसे कि आजकल के ना जो स्कीमोस जो रहते हैं ना वहां पे नॉर्थ पोल के अंदर, वो कहें कि हम यूएसए के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं और हम जो है ना वो सोवियत रशिया के ऊपर भी अटैक करने के लिए जा रहे हैं और हम चाइना के ऊपर भी अटैक करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो कैसी अजीबो गरीब किस्म की आपको बात आई है। ठीक है, बहरहाल सहाबा खैर वैसे भी नहीं थे, एस्किमोज जैसे तो नहीं थे, लेकिन उनकी और ये जो वर्ल्ड सुपर पावर्स थी, और ये सुपर पावर्स जो हैं ये कोई नई नई नहीं बनी थी सुपर पावर्स, आजकल अमेरिका तो अभी अभी बना है ना बच्चा ये तो, ठीक है, अभी चंद एक 100 साल भी नहीं हुए बने हुए तकरीबन। ठीक है, वो जो थी ना सुपर पावर्स, ये हजारों साल से ये सुपर पावर थी, ठीक है, और इतना ज्यादा इनके पास मिलिट्री पावर थी, इतना इनका कल्चर जो था ना इतना एडवांस था, इनकी जो जो एजुकेशन सिस्टम था इतना एडवांस था कि आप ऐसे ही है जैसे कि आज के जमाने में अगरचे कि आज के जो सुपर पावर्स हैं वो बजाय तो बहुत ज्यादा लगती है लेकिन उनका कोई इतनी डेप्थ नहीं है उनके अंदर, ठीक है ना, जितनी के उन लोगों की डेप्थ थी, गहराई थी। ठीक है, अबू बकर सिद्दीक ने अब फरमाया कि कि अब हम इन दोनों के ऊपर अटैक करेंगे एक साथ, इधर भी फोर्सेस भेजी इधर भी फोर्सेस भेजी, ठीक है ना। क्यों उन्होंने ऐसी बात ऐसी की, ऐसे ऐसे काम क्यों किए उन्होंने, दोनों
भाई दोनों मिलके उनके मुकाबले में ना आ गए।
मिलके उनके मुकाबले में ना आ जाए। नहीं तो एक की तरफ भेजेंगे तो खैर दूसरा मिलके मुकाबले में ना आ जाए, मतलब ठीक है। ये सारी चीजें तो स्ट्रेटेजिकली आप देखते हैं ना कि दोनों मिलके मुकाबले में ना आ जाएं वगैरह वगैरह, ठीक भाई। तो इनको एक बात पता थी ना, इनका एक बात के ऊपर यकीन था कि इन काफिरों को शिकस्त मैंने को थोड़ी देनी है, राइट। इन काफिरों को शिकस्त मेरे फौजियों ने को थोड़ी देनी है, इन काफिरों को शिकस्त तो अल्लाह ताला ने देनी है ना, ठीक है ना। हमारा काम तो ये है कि हम चलें, ठीक है ना, हम आगे बढ़ें, हम वो काम करें जो नबी अलैहिस्सलाम हमें दे करके गए हैं, हमें जो हुक्म मिला है हम उसको हुक्म को पूरा करें, बाकी अल्लाह जाने, अल्लाह का काम जाने, ठीक है ना। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ठीक है, अल्लाह जाने अल्लाह का काम जाने। हमने तो भाई 10 हफ्ता कदम बढ़ाना है, हमें तो नियत करनी है, ठीक है। तो ये वजह थी कि जिसकी वजह से इनको कोई परवाह नहीं थी कि आगे क्या होगा, बस ठीक है अगर हम मुकाबला नहीं कर सके तो हम रुक जाएंगे, फिर उसके बाद हम प्लानिंग करना शुरू कर देंगे, फिर अगर आगे से कुछ मसला हो गया तो फिर हम रुक जाएंगे, लेकिन हमने इनसे डरना नहीं है। हमें डरने की जरूरत क्या है, हमारे तो भाई हमें तो मरना है, हम तो यहाँ पर अच्छी मौत मरने के लिए आए, हम इस दुनिया के अंदर रहने के लिए कोई थोड़ी आए, ठीक है ना, कि हमने इधर ही रहना है, अच्छे अच्छे घर बनाने हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां बनानी है, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनानी है ना, और उसके अंदर जो है वो हमने रहना है और कहीं नहीं जाना है, छोड़ के नहीं जाना कहीं, नहीं हम तो यहाँ पे मरने के लिए आए हैं भाई, ठीक है ना। तो मरने से पहले हम कुछ करना कर क्यों ना जाए कि मरने के बाद वाली जिंदगी के लिए हमारे पास सवाब इकट्ठा हो जाए, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला की रजा इकट्ठी हो जाए, ठीक है। तो इन लोगों की जो सोच का अंदाज था ना, ये सोच का अंदाज ही बिल्कुल मुख्तलिफ था, ठीक है। तो इन्होंने अपना काम किया, क्या हुआ, इनकी खिलाफत के जमाने में इनकी नजरों के सामने फारिस फतह हो गया, नहीं फारिस फतह नहीं हो, अबू बकर सिद्दीक रतान दुनिया से चले गए, फारिस नहीं फतह हुआ, रोम तो अभी तक फतह नहीं हुआ, रोम तो कभी भी फतह नहीं हुआ, फारिस जो है वो उमर फारूक रतान के जमाने में फतह हुआ, ठीक है ना। रोम के बहुत सारे इलाके उस्मान गनी रतान के जमाने में फतह हुए, तो ये कोई थोड़ी है कि फतह हो गया और दुनिया के अंदर सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान रह गए और काफिर सारे के सारे खत्म हो गए, नहीं, ना तो ये उस वक्त हुआ ना ये अभी हुआ, लेकिन दे डिड नॉट केयर, उनको इस बात की परवाह थी ही नहीं। उनको किस बात की परवाह थी कि मैं अपना काम कर रहा हूं कि नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, बस इस बात की परवाह थी। दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला ने उनको सबसे ऊंचा मकाम दे दिया उम्मत का, खत्म बात, है ना। फातेह फारिस नहीं कहलाए वो, फातेह रोम नहीं कहलाए वो, उसे क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क पड़ता है इस बात से, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इन्होंने जो है ना वो, अब जब वो अला बिन हजरमी रतारा थे तो उन्होंने जब दरिया में घोड़े दौड़ा दिए तो उनको पता था अब क्या होगा, उन्होंने तो अल्लाह की वजह से दौड़ा दिए थे ना, अब अल्लाह का काम है कि भाई इन घोड़ों को आगे पहुंचाना, इन घोड़ों को तैरना इतना कोई थोड़ी आता है कि वो पूरा का पूरा समुंदर उगूर करके उधर उधर पहुंच जाए, ये तो अल्लाह का काम है ना, लेट अल्लाह डू हिज जॉब। हमारे हजरत भी बड़ी प्यारी बात कहते हैं इस किस्म के, जब बड़े बड़े मसले आते हैं ना तो हजरत जी एक बड़ी प्यारी के बात कहते हैं, फरमाते हैं लेट अल्लाह डू हिज जॉब, जो अल्लाह का काम है ना अल्लाह को करने दो, तो वो करो जो तुम्हारा काम, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। तो इन्होंने जो है ना फिर मजूसियों जो ईरान में रहते थे, फारिस वाले, उस जमाने में फारिस कहलाता था, ठीक है, तो वहां पर भी लश्कर रवाना किए और रोम के अंदर भी, रोम के लिए भी लश्कर रवाना किए, ठीक है। उसका आपने सुना ही होगा, सीरत नबी से आपको उम्मीद है कि बात याद होगी कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो फारिस का बादशाह था खुसरो परवेज भी उसको कहते थे, और उसको दूसरा क्या नाम था, फारिस के बादशाहों को क्या कहा, क्या
इसरा
किसरा, ठीक है, किसरा। तो उसको जब एक सहाबी के जरिए से लेटर भेजा था अपना, तो उसने जो है ना नबी अलैहिस्सलाम के लेटर को टुकड़े टुकड़े कर दिया, ठीक है, रेजा रेजा कर दिया था। नबी अलैहिस्सलाम को जब ये खबर मिली थी तो आपसे फरमाया था कि अल्लाह ताला इसकी सल्तनत को भी टुकड़े टुकड़े कर देगा, ठीक है। और फिर कुछ अरसे के बाद क्या हुआ था कि उस खुसरो परवेज के बेटे ने ही फिर अपने बाप को कत्ल कर दिया, ठीक है। और फिर बेटे को जो है फिर किसी दूसरे बेटे ने कत्ल कर दिया। इस तरह होते होते इनके खानदान के 13 शहजादे खत्म, 13 के 13 शहजादे जो थे ना जिन्होंने बाद में बादशाह बनना था, सब खत्म हो गए, कोई बंदा बाकी नहीं बचा। अब एक लड़की बाकी बच गई, उस लड़की को जो है उन्होंने अपना बादशाह बना दिया, बलका बना दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद वो मुसलमानों के हाथों बुलाकर के सल्तनत पूरी की पूरी खत्म हो गई। तो ये जो तफसीलात है इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। किसी को अगर कोई सवाल पूछना हो या कुछ बताना हो, माशाल्लाह आप लोग तो सवाल पूछने ज्यादा जो है मुझे नहीं मालूम, आप में इजाफा करने का भाई ज्यादा बनता है तो वो भी मोस्ट वेलकम। कुछ और बताएंगे आप? ठीक है, तो हम फिर आज टाइम पे जो है आज की अपनी क्लास खत्म कर देते हैं। वाखिर दुआवाना अलहम्दुलिल्लाह।
Recording stopped.